ओम शांति। बाबा के बेहद घर में ईश्वरीय सेवा, यज्ञ सेवा करने के लिए सभी पहुंच गए हैं। बाबा का मीठा घर कितना आकर्षित करता है हम सबको। जब से प्रोग्राम मिला होगा, जब से बहन जी ने कहा होगा मधुबन चलना है, जब से टिकट बुक कराई होगी, तभी से ही मधुबन याद आ रहा होगा। और अब जब पहुंच गए हैं 7-8-10-15 दिन के लिए जो भी, तो हमें मधुबन के जो विशेषताएं हैं, जो इस स्थान पर बाबा से हमें प्राप्तियां होती है, उसके लिए एक अपने मन में एजेंडा बना के रखना है कि हम यहां क्या प्राप्त करने आए हैं। जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य किसी लक्ष्य को लेकर के करता है, कोई प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, तो उसे उस कार्य को करने में बहुत सफलता मिलती है। तो हम यहां आए हैं, बहुत सारे भाई बहने मिलते हैं, देखते हैं, खुशी मिलती है, सेवाएं करेंगे, अनुभव मिलेगा, बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी, ये तो सब होगा ही। लेकिन जब मैं आत्मा यहां से अपने घर, अपने सेवा स्थान पर वापस जाऊंगी, तो इस बार का मेरा मधुबन में आना कोई विशेष प्राप्ति करा के संपन्न होके मुझे जाना है, ये सभी लक्ष्य लेंगे ना। इस बार की मेरी विजिट कुछ खास मुझे प्राप्त कराए, ऐसा कोई एजेंडा अपने अंदर रखेंगे। तो आपको इस बार का मधुबन का ये मिलन जरूर अच्छी प्राप्ति कराएगा। आज मुझे ये कहा गया कि हमें बाबा से क्या क्या मिला है, क्या प्राप्तियां होती है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, रात्रि क्लास होती है, कई लोग आज आबू दर्शन करके आए होंगे, कई लोग आज पहुंचे होंगे, 2-2.5-3 दिन का सफर करके आए होंगे, अभी तक तो यहाँ के मौसम में भी अपने आप को थोड़ा सा सेट नहीं कर पाए होंगे, थकान भी होगी। तो रात्रि क्लास में हमें बहुत ज्यादा गंभीर बातें नहीं करनी है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें जो मन को लक्ष्य की ओर ले चले। खुशी तो हम सब का अधिकार है, यहां तो एक एक जगह पर एक एक भाई बहन से खुशी मिलती है, तो आज खुशी का अनुभव भी हम सबको करना है। तो मैं सोच रही थी हमें बाबा से क्या मिला है। अगर कोई आपसे पूछे, और अक्सर पूछते हैं लोग जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ के लाल बत्ती जगाते हैं, लोग कहते क्या मिलता है, नींद छोड़ के बैठ जाते हैं, क्या मिलता है ना। सुबह सुबह ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, क्या भी हो, मुरली जरूर सुननी है, मुरली जरूर सुननी है। लोग बोलेंगे रोज रोज क्या है, क्या मिलता है। ये सवाल सबके सामने कभी न कभी किसी ने तो बोला होगा ना, क्या मिलता है आपको है? दुनिया के साज श्रृंगार छोड़ करके एक सफेद कपड़े में हर समय देखो तो सफेद कपड़े में अच्छा लगता है आपको, क्या मिलता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा जवाब भी होना चाहिए कि नहीं। हम ऐसा जवाब दें कि उससे भी वो प्राप्ति करने का मन हो जाए। तो हम क्या जवाब देते हैं अक्सर? बहुत सी माताएं भोली है, हम सभी भी बहुत ज्ञान के नशे में होते हैं, हम कहते हैं हमको भगवान मिला है। अब वो उनको तो नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो बोलते हैं कि ऊपर से नीचे तक देखते एक बार, ठीक तो है ना ये लोग। जिन जो ऋषि मुनियों को नहीं मिला, पहाड़ों पे जाके तपस्या की, उन्हें नहीं मिला, एक पल का दर्शन नहीं होता लोगों को, ये इनको कुछ और चीज के कोई गुरु मिल गया होगा, ये उन्हीं को ही भगवान समझ के और खुश हो रहे हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें सोचे आज कि जो हम उनको कह सके कि जो हमें मिला है ना, वो चीज मिली है जिसके लिए तुम सारी जिंदगी परेशान होते हो, फिर भी तुम्हें नहीं मिलता, वो हमें यहाँ पे मिला है। जो कहते हैं ना जादू, कई लोग कहते भी है ना, परिवारों में भी बोलते हैं इनके साथ जादू हो गया है क्या। जादू क्या होता है? एकदम कल्पना में भी ना हो, फार्मूला से हटके कोई चीज हो जाए, प्रोसेस से हटके कोई चीज हो जाए तो उसको कहा जाता है जादू। तो देखो, दुनिया में लोगों की पूरी जिंदगी जिन चीजों को, जिन खुशियों को पाने में चली जाती है, भागते रहते हैं, और जिंदगी के लास्ट दिनों में वो व्यक्ति सोचता है तो मुझे क्या वो सब कुछ मिला, क्या खोया क्या पाया। तो अक्सर उसे लगता है कि मेरी जिंदगी तो यूं ही बीत गई, कुछ नहीं मिला। आज हम ऐसी चीजें सोचते हैं, किसके लिए हम दौड़ते आए इस जिंदगी में ही नहीं, कई जन्मों से। सबसे पहले जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो बाबा हमें आत्मसम्मान देते हैं, जो पहली चीज है व्यक्ति को कैसी भी मुश्किल घड़ियों में स्टैंड करती है, खड़ा करती है, खड़ा रख पाती है, तो वो है उसका आत्मसम्मान। बड़ा मुश्किल से मिलता है, नहीं मिल पाता है लोगों को। लोग अक्सर दो भान में रहते हैं। आज की दुनिया में आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो दो प्रकार की भावनाएं हैं। एक तो अभिमान में रहते हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल गया उसी के नशे में, मेरे पास तो ये बहुत है, मेरे पास वो बहुत है, तो ये लोग ज्यादा दिखते हैं जिनको छोटी मोटी प्राप्तियां, जिसको बाबा मुरली में क्या कहते हैं कि चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और वो समझने लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दुनिया के नक्शे में इतने से किसी एक प्लॉट में बंगला बना के रहता है वो, लेकिन उसे नाज कितना होता है, जैसे कि क्या बना, क्या कर लिया मैंने, झूठी शान में। तो एक तो अभिमान में उनका जाता है, दूसरे बहुत सारे लोग जो आज के टाइम में निराशा में जा रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ बचा ही नहीं है, कोई अपना नहीं है, मतलब की दुनिया है, ना कुछ आया ना कुछ पाया ना कुछ मुझे खुशी है, निराश होते जा रहे, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। और आपको पता होना चाहिए डिप्रेशन की बीमारी सबसे ज्यादा हमारे देश में फैल रही है, भारत में, क्योंकि हम थोड़े से भावुक ज्यादा है। तो एक तो लोग निराश हो रहे हैं, कुछ लोग अभिमान में है, दोनों ही स्थितियां गलत है। ऊंची स्थिति है कि मैं जो हूं, जो मुझे मिला है उसके भान में मुझे रहना, और इतने ऊंचे उस स्वमान में रहना जिससे कल्पना से भी ज्यादा काम कर सकता है व्यक्ति। बाबा हमें रोज मुरली में अलग अलग स्वमान दे करके हमारे आत्म सम्मान को बढ़ाते हैं, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा वरदान में। तुम विश्व कल्याणकारी हो, कितनी बड़ी बात है। समझ लो आज तक हम क्या कहते थे, कोई मेरा भला करे, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरा भला ही नहीं सोचता है, कोई मेरा अच्छा ही नहीं सोचता है। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, तुम विश्व कल्याणकारी हो। हमें याद आना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए। रामायण के अंदर एक बात आती है जिसमें कहते हैं ना कि हनुमान को कहना पड़ा कि भाई ये जो सागर है इसको पार करके उस पार लंका है, वहां तुम उड़ के जा सकते हो, तुम्हारे पास वो ताकत है। उसे पता नहीं था, वो भूल गया था। जब याद आया उसके बाद उसने ट्राई किया तो क्या हुआ, पहुंच गया। नहीं तो वो चुपचाप कोने में बैठा था, जब पता चला कि सीता जी लंका में है परंतु जाएगा कौन। लेकिन फिर उसका नाम अमर हो गया, इतिहास में आ गया। कब, जब उसका सोया हुआ वो सम्मान जागृत हो गया। बाबा भी रोज यही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है कि हमें अलग अलग तरह से बाबा ऊंचे सम्मान के स्थिति पर बिठाते हैं। आज की दुनिया में ये कहीं पर भी किसको भी नहीं मिलता है। लोग अगर आपसे काम लेना है तो आपकी महिमा करते हैं, झूठी भी महिमा कर लेते हैं, ये भी गलत, या तो आपका अपमान कर देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन परमात्मा क्या करता है, हमें अपने ऊंचे सम्मान की ओर ले जाता है। दुनिया में जिसने अपना सम्मान नहीं खोया वो चाहे और कुछ भी खो ले फिर भी वो हारेगा नहीं। सब कुछ लूट जाए लेकिन जब तक मेरे अंदर मेरा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास कायम रहेगा, मैं सब कुछ पा सकती हूं। तो हमें कौन मिला है, परमात्मा, और उसने हमें क्या दिया है, आत्मसम्मान। बहुत ऊंची स्थिति है। शुरू शुरू में पांडव भवन था, दादियां कहती है कि बहनें ज्यादा थी भाई कम थे। अच्छा, माउंट आबू जंगल आसपास था, अभी तो शहर जैसा लगता है माउंट आबू, तब ऐसा नहीं था। तो सबकी ड्यूटीज लगती थी, सारे काम तो यज्ञ निवासी करते थे। तो दादियों को भी, बहनों को भी पहरा देने की भी ड्यूटी होती थी, गाड़ी चलाने की भी ड्यूटी होती थी। तो बाबा जो है उन्हें बहुत मेंटली प्रिपेयर करते थे। भाइयों की ड्रेस पहनते थे बहने, रात भर पहरा देते थे पांडव भवन में। बाबा उनको फुल्ली मोटिवेट करते थे पहले, देखो बच्ची तुम कभी ये मत समझो कि तुम एक स्त्री हो, तुम अबला हो, ये तो पुरानी बातें हो गई। तुम शिव शक्ति हो, उससे भी बड़ी बात बाबा कहते थे तुम याद रखना मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। इस जन्म में मेरी ये काया एक बहन की है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारे जन्म, तो सबको पता है ना, आत्मा नर और नारी दोनों प्रकार के जन्म में आई है ना कि नहीं आई है। भाइयों को पता है ना, बहनें भी बने हैं ना, पता है ना। तो जब दादियां उसी सोमान में रहती थी, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, चाहे कुछ हो जाए उनकी पूरी रात कुछ पता ही नहीं चलता था। ये है प्रैक्टिकल। तो आत्मसम्मान हमारा कभी भी खोए नहीं, ये बाबा से हमें मिला हुआ है, ये भूलना नहीं हमको। आज भी बाबा ने कहा मुरली में, रचयिता और रचना के जो ज्ञान मिला है, जो प्राप्तियां हुई, उसको बार बार सिमरण करोगे तो हर्षित रहोगे, भूल जाओगे तो उसकी खुशी कहां से मिलेगी। कोई व्यक्ति करोड़पति हो लेकिन उसको खुद ही नहीं पता है कि मेरे पास करोड़ों रुपया है तो क्या फायदा रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए, पहली चीज। तो हमें आत्मसम्मान मिला है, हमारे पास सब कुछ चला जाएगा, अंतिम श्वास बचा होगा, उस दिन भी हम नशे में होंगे, ہوں گے کہ نہیں؟ نشے میں ہوں گے. بہت سارے سنمان روز ملتے ہیں, اسے ہمیں دھارن کرنا ہے. دوسری چیز, بابا ملا, ہم بہت بار کہتے ہیں کہ ان کو یہ پراپتی ہوئی, ان کو وہ پراپتی ہوئی, تو کیا کوئی چیزیں بدل جاتی ہیں؟ پرماتما ہمارے جیون کی چیزیں بدل دیتا ہے؟ کسی کے گھر میں دھن کی برسات کرتا ہے؟ کسی کے کوئی ویکتی دکھ دینے والا ہوتا ہے تو بھگوان اس کو دور کر دیتا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں کرتا ہے نا بابا. ہم جہاں ہوتے ہیں وہیں تو رہتے ہیں, ہم گھر چھوڑ کے بھاگتے نہیں, ہم جنگل میں جاتے نہیں. پرستھتیاں تو وہی رہتی ہے, گھر وہی رہتا ہے, پر ہم گیان میں آنے کے بعد کہتے اب ہم کو اچھا لگ رہا ہے. کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ پرستھتیاں وہی ہے, لیکن بابا نے ہمیں جو دیا وہ دوسری پراپتی ہمارے جیون کی ہے. بابا نے ہمیں درشتی کون دیا, درشیہ تو نہیں بدلے ہیں, لیکن ان کی طرف کا ہمارا درشتی کون بدل گیا. پہلے ہم سوچتے تھے یہ کیوں مجھے سکھ نہیں دیتا میرا بیٹا, میری بہو ایسا کیوں کرتی ہے, میرا بھائی میری بات کیوں نہیں مانتا, یہ کیوں نہیں ہوتا, وہ کیوں نہیں ہوتا. اب ہمارا درشتی کون کیا ہے, ان کی طرف دیکھنے کا ہمارا نظریہ کیا ہے. ہر آتما اپنا اپنا پارٹ بجا رہی ہے. سکھ یا دکھ ملتا ہے تو کسی کو کوئی دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو میرا اپنا حساب کتاب ہے. تو دیکھو چیزیں کوئی بدلی نہیں ہے, ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں بدلے ہیں, لیکن ہمیں کیا ملا ہے, اب ایک نیا درشٹی کون ملا ہے. اور دنیا میں کہا جاتا ہے ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. اگر ویکتی کے پاس نظریہ صحیح ہوتا ہے تو نظارے کوئی بھی ہو اسے فرق نہیں پڑتا ہے. چیزیں آس پاس کیسی بھی ہو رہی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ہمیں اس کی طرف سوچنے کا دیکھنے کا نظریہ بدلنا ہے. ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا ایک پاؤں کٹ گیا, پوری زندگی پڑی ہے. کسی نے پوچھا تو تم نے بھگوان سے شکایت نہیں کی, تمہیں برا نہیں لگا تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی, اور مجھے پتا ہے بھگوان ایک جگہ سے کوئی چیز لیتا ہے تو دوسری جگہ دیتا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کے پاس دونوں ٹانگیں نہیں ہوگی, بھگوان نے میری ایک لے لی, ضرور اس کو ایک ملی ہوگی, اس لیے میں خوش ہوں کہ بھگوان نے میری ایک چیز کو یوز کیا. کیا تھا اس کے پاس خوشی کے لیے؟ تھی تو پرستھتی دکھ کی, پر اس کے پاس کیا تھا, ایک اچھا نظریہ تھا, اچھی سوچ تھی. تو بابا نے ہمیں جو ڈراما کا گیان دیا, بابا جو ہمیں روز مرلی میں باتیں سناتے ہیں, یہ ہمیں اپنے من کی استھتی کو کیسا رکھنا, نہ کہ وہ پرستھتی بدل جانی چاہیے. بہت سے بھائی بہنیں گیان میں آنے کے بعد بھی خوشی کا انبھو نہیں کرتے ہیں. گیان میں تو آ گئے لیکن پرستھتیاں نہیں بدل رہی ہے. گیان میں تو آ گئے طبیعت تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہی ہے. گیان میں تو آ گئے لیکن لوگوں کا ویرود ابھی تک مٹتا ہی نہیں ہے. تو ہم اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے, وہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اگر اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے تو بابا نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تمہارے کرم کے حساب کتاب اس انتم جنم میں پورے ہوں گے, اور جتنے کرم کے حساب کتاب پورے ہوتے جائیں گے اتنا تم آتما مکت ہوتی جاؤ گی. تو جب بھی ایک بیماری آئی چلی تو ہمیں کیا سمجھنا ہے, یہ بھی میرا ایک قرض اتر گیا, ایک اور پرابلم آئی ایک قرض اور اتر گیا. کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں آنی چاہیے پرستھتیاں, تبھی بھگوان ہے, तभी ज्ञान सही है, तभी समझो मुझ पर बाबा की बड़ी मेहरबानी है, कृपा है, वरना पता नहीं शायद बाबा की भी कृपा नहीं है। कई बार ऐसा कह देते ना भाई बहने, बाबा की मदद नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना। अभी अभी एक बहुत सुंदर गीत बना है ना, आपने सुना ही होगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, पर मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कोई भी बात आए, आप उसके प्रति हमारा अपना दृष्टिकोण बहुत अच्छा रखिए, और उस समय ये महसूस करिए कि कुछ अगर मेरी इच्छा से हो रहा है तो बहुत अच्छा है, कुछ अगर मेरी इच्छा से नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसका मतलब वो किसकी इच्छा से हो रहा है? बाबा की, स्वयं परमात्मा की इच्छा से वो कार्य हो रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो दृष्टिकोण सही सेट करना बाबा ने सिखाया है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, इसको बिल्कुल हमें मिस नहीं करना है। जब भी कुछ भी होता है तुरंत राइट एटीट्यूड क्या है उसे याद कर लें, उसे सेट कर लें। जैसे युद्ध में कोई जाता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि किस तरह से मुझे वार करना होगा, लेकिन वो सभी प्रकार की प्रिपरेशन रिहर्सल करके जाता है, अभ्यास करके जाता है। फिर जैसी परिस्थिति, जैसा सामने दुश्मन वार करता है, वैसा वो भी अपना डिफेंसिव वार करता है। इसी तरह से हमें ज्ञान मिल गया है, अब परिस्थितियों में उसे इस तरह से प्रयोग करने के लिए बाबा रोज हमें अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। दुनिया में अगर किसी को आप बोलेंगे कि मैंने जीवन में राइट एटीट्यूड को पा लिया है, अब मेरे साथ कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज अगर हम सोचें तो दुनिया में आज सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल इतनी खराब है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है। अगर आप बाबा के ज्ञान की एक एक श्रीमत को ठीक से समझ लें तो आप पूरी तरह हेल्दी हो सकते हैं। बाबा ने हमें संपूर्ण स्वास्थ्य दे दिया है, आप महसूस करिए। हिसाब किताब अनुसार कुछ बातें आती भी है तो बहुत ज्यादा उसका असर नहीं होता, पर हकीकत में ज्ञान हमें पूर्ण स्वास्थ्य देता है। दुनिया में किसी के भी पास टोटल हेल्थ की कोई चाबी नहीं है, कोई एक डॉक्टर नहीं है जो आपके पूरी बॉडी को हमेशा के लिए हेल्दी रखने की कोई ट्रिक जानता हो, लेकिन बाबा जो सुप्रीम सर्जन है, बाबा ने हमें जो दिनचर्या दी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, डेली हम आत्मचिंतन में बैठते हैं, हम जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं वो भी बाबा की याद में करते हैं, हम डेली रात को सारे संकल्पों को शांत करके सारे दिन की दिनचर्या को समाप्त करते हैं, बाबा की गोद में सोते हैं, अगर आप स्ट्रिक्टली इन पूरी चीजों को फॉलो करके देखिए, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें मिस कर देते हैं। कभी सात्विक खाना तो खाते हैं, लेकिन सात्विक खाने को बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाते हैं और टेस्टी बना बना के उसको बहुत ज्यादा खा लेते हैं। सात्विक तो है परंतु बहुत गरिष्ठ बना के ज्यादा खा लेते हैं। कभी हम दिनचर्या में भी अपने हिसाब से बहुत फर्क कर लेते हैं, क्या करें मेरी जॉब ऐसी है, मैं रात को जागता हूं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं, मैं सुबह की क्लास नहीं करूंगा, मैं मुरली कभी भी पढ़ लूंगा। आजकल लोग बोलते हैं व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे, नेट पे पढ़ लेंगे, लेकिन जो बाबा ने कहा है कि सुबह उठना, तैयार होना, सेंटर पर पहुंचना, खुली हवा में आपका संपर्क होगा, आप आएंगे वापस, उसके बाद आपकी दिनचर्या जो शुरू होगी, आपके मन को तन को दोनों को फुल्ली आपने चार्ज किया होगा, ये सारी चीजों का महत्व है। आप सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, हो ही नहीं सकता है कि आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो वास्तव में ज्ञान के सिवाय कोई भी हमें टोटल हेल्थ नहीं देता। वैसे भी दुनिया में हेल्थ की परिभाषा क्या है? शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक, सामाजिक, है ना, आध्यात्मिक, सभी प्रकार का स्वास्थ्य जब तक ना हो व्यक्ति कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता है। तो बाबा हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देते हैं। आज दुनिया में अगर स्वास्थ्य मिल जाए ना तो लोगों का जीवन कितना सुगम हो जाए। आज हर एक को सुनते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो हम ये नशे से कहें कि हमें सुप्रीम सर्जन मिला है, अगर हम उसकी पूरी बात मानते हैं तो हम सदा हेल्दी रहते हैं। चौथी बात मैंने जो आज सोची कि दुनिया में एक चीज है जो लोगों को बहुत दुखी करती है, और वो ये है कि लोग कंपैरिजन और कंपटीशन बहुत करते हैं। आज की दुनिया में दूसरों से कंपेयर करना और कंपटीशन, है ना, हर चीज में आप देखेंगे उसने अपने घर में ये लाया तो दूसरा भी कंपटीशन में है, उसकी ऐसी कार है तो दूसरे को भी कंपटीशन में उतरना है, उसके पास इस ब्रांड का कपड़ा है दूसरे को भी चाहिए, उसने अपने घर में शादी में इतना खर्चा किया, ऐसा डेकोरेशन किया, वो किया, दूसरे को भी करना है। बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है? कई बार आप मुरली में सुनते होंगे, बच्चे रेस करो, रीस नहीं करो। लेकिन रेस भी कौन सी? बाबा ने हमें बहुत अच्छी रेस बताई है, खुद से कंपटीशन करो, खुद से कंपटीशन करो, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ट्रैक खाली है। खुद को दिन प्रतिदिन हम ज्यादा से ज्यादा अपडेट करें, ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाएं। खुद से जो कंपटीशन करेगा उसको दुनिया की कंपटीशन में कहीं पे फेल भी नहीं होना पड़ेगा। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर या कंपटीशन करते हैं तभी हम परेशान होते हैं। बाबा ने कहा है आपका असली स्वरूप सामने रखो। पहले बाबा बोलते थे हर एक को ताज पहन के, राजाई ड्रेस पहन के अपनी एक फोटो खिंचा के रखो, याद है मुरली में आता है, पासपोर्ट अपना ऐसा बनाओ जिसमें एक राजाई की फोटो हो और एक वर्तमान की, सिंपल। फिर रोज देखो कि मैं अभी इस स्वरूप में हूं और मुझे इस स्वरूप में जो मेरा ओरिजिनल है, कितना समय लगेगा, अभी तक क्या क्या बाकी है, कितनी अच्छी बात है। खुद से ही कंपटीशन करना है। आज इस बार हम मधुबन से ये व्रत ले लें कि हम खुद को देखते हुए खुद ही को और अधिक बेहतर बनाते जाएंगे। किसी शायर ने भी कहा है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। भगवान तकदीर लिखने से पहले पूछे, बेटा क्या लिखूं तेरी तकदीर में बता दे। इतना हम खुद को बुलंद करते जाएं, फोकस्ड कर ले, क्या देखना है मुझे, कौन क्या कर रहा है, मुझे यही देखना है कि कल से मेरा आज अच्छा हुआ। कई लोग क्या कहते हैं, पहले पहले हम ज्ञान में आए तो बहुत खुशी थी, मतलब अभी कहीं ना कहीं वो पारा, तो क्या हमने खुद से कंपटीशन नहीं की? हम दिनों दिन नीचे जा रहे हैं और हम क्यों जा रहे हैं हम सोच नहीं रहे। कारण निकालिए, ठीक कर लीजिए, किसी के भी कारण मेरे जीवन में ये परमात्म प्राप्तियां, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। कारण जो भी हो, एक तरफ फोकस कर लें, एक ही जन्म मिला है खुद को बनाने का, بن جانا ہے مجھے، کچھ اور نہیں دیکھنا ہے، تیاگ کرنا پڑے تیاگ کر دیجئے، سہن کرنا پڑے سہن کر لیجئے، سننا پڑے سن لیجئے، لیکن اپنے آپ کو دیویہ گن کی مورت بنا ہی لیں۔ کیا وشیشتا ہے ہماری ستیوگی سوروپ کی؟ سرو گن سمپن، سولہ کلا سمپورن، سمپورن نروکاری، اہنسا پرمو دھرم، مریادا پرشوتم۔ اپنے آپ کو روز ہمیں دیکھنا ہے اس فریم میں، یہ پانچ باتیں ہیں، اس فریم میں فٹ ہونے کے لیے میرے میں ابھی کتنی گنجائش ہے، جب تک میں نے یہ نہیں کیا میرے لیے دنیا کے باقی سارے سبجیکٹ کون کیا کر رہا ہے یہ سب ایک طرف۔ ایک بچہ پڑھائی کے بدلے دوسری باتوں میں دھیان دیتا ہے تو آپ کہتے بیٹا آپ کو پڑھنا ہے، باقی سب چیزیں چھوڑو، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ کا دھیان پڑھنے میں ہونا چاہیے، اور ٹینشن مت لو۔ ہم بھی اسٹوڈینٹ ہیں نا، کیا ہمارا دھیان اپنے اس لکش کے فریم میں فٹ ہونے کے لیے پورا سمے رہتا ہے، یا ہم بھی کہیں اور باتوں میں چلے جاتے؟ خود سے کمپٹیشن کرنا یہ بابا کی بات بہت بڑی پراپتی ہے، اس کو ہمیں بھولنا نہیں ہے۔ اور ایک بات جو کبھی کبھار کئی بار سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ سمبندھوں میں بھی بڑے پریشان ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن میرے ساتھ والوں سے میں خوش نہیں ہوں، میری پتنی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، میرا بیٹا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ پرنتو بابا نے ہمیں کہا ہے سمبندھ کو نبھانے کی کلا بھی بابا کی گفٹ ہے، بابا نے اس میں کئی باتیں ہمیں سکھائی ہے۔ پہلے خود کرو، ایگزامپل بنو، پھر کوئی بات اوروں سے ایکسپیکٹ کرو۔ اکثر ہم بہت لوگوں سے بہت چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہی چیزیں ہم خود نہیں کر پاتے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہی ہیں نا، ماں باپ بچوں کو بولیں گے بیٹا ٹی وی زیادہ نہیں دیکھو، اندر جا کے پڑھائی کرو، خود ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بچے کو بولتے تم بیڈ روم میں جا کے پڑھائی کرو، سٹڈی روم میں جا کے پڑھائی کرو۔ بیٹا سگریٹ کبھی نہیں پینی چاہیے، وہ باپ پی رہے ہیں، اس لیے وہ بچے نہیں سیکھ پاتے، سمبندھوں میں وہ رس نہیں رہتا ہے۔ جب آپ صرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پہلے گیو اینڈ ٹیک، یہ بابا نے کہا ہے نا، پہلے دیجئے بعد میں آپ کو ملے گا۔ تو ہر سمبندھ میں آتمک درشتی دینے کی بھاونا، بابا نے جو کہا ہے داتا بنو، آپ تو مہان آتمائیں ہو، یہ جو آس پاس چھوٹے اگیانی یا کسی بھی پرکار کی کمزور آتمائیں ہیں، ہم ان سے اپیکشا کر لیں، وہ میرا ریگارڈ نہیں رکھتے ہیں، وہ میری بات نہیں سنتے ہیں، وہ میری بات کو پورا سمجھتے ہی نہیں ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ارے اسی لیے تو وہ پیچھے ہیں، آپ مہان ہیں، آپ یہ ایکسپیکٹ مت کریے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، آپ ان کی کمزوری کو سمجھیے، بہت فرق پڑ جائے گا۔ تو سمبندھوں کو نبھانے کی کلا جو بابا ہمیں دیتے ہیں ایسی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج کل ریلیشن بہت بڑی پرابلم بنتے جا رہے ہیں، ریلیشن بوجھ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں چیزیں استعمال ہوتی تھی، لوگوں کے ساتھ پیار ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا ہے، چیزوں سے پیار ہو گیا ہے اور لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، بہت الٹا ہو گیا ہے فارمولا۔ تو ہم کبھی کسی کو یوز نہیں کریں، اپنے کام کے لیے یوز کر لیا، بعد میں اس کی فیلنگ کا کوئی دھیان نہیں، سمبندھ اچھے نہیں بنیں گے۔ بابا نے کہا ہے ہر آتما کو اپنا سمجھو، ہر آتما کو نردوش سمجھو، ہر آتما کو پرماتما کا بچہ، अपने परिवार का समझते हुए उसके कल्याण की भावना रखो, शुभ भावना रखो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बाबा ने दी है, हमें इसको याद रखते हुए इस गिफ्ट को संभाल के अपने जीवन में उस गिफ्ट को सजा के रखना है। फिर देखना आपको लगेगा कि बाबा मिला क्या नहीं मिला। अच्छा, हम क्या करेंगे? ये सब बाबा की प्राप्तियां हैं, अभी हमें क्या करना है? कोई हमें गिफ्ट भी देता है तो हम क्या करते हैं? याद रखते हैं, धन्यवाद करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मैं भी कभी मौका आए तो मैं भी इनको कुछ तो रिटर्न गिफ्ट दूं, आज नहीं तो कभी तो दूं। हम बाबा को इतनी प्राप्तियां जो बाबा करा रहा है, हम बाबा को क्या देंगे? आज मैंने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट सोचते हैं। मैंने दो चीजें सोची, एक तो बाबा को हम ये गिफ्ट दें कि हम वो सारी चीजें जो बाबा को पसंद नहीं उसे अपने अंदर से ना कहेंगे, ना कहना सीखेंगे। वैसे बाबा ने हमें कहा है आपको हां जी का पार्ट सीखना है, लेकिन पुरुषार्थ में मैं देखती हूं बहुत सी चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंडिकेटर चालू होता है, हमें लगता है समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, परंतु हम फिर भी होता है, चलता है, सभी करते हैं, धीरे धीरे छोड़ देंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना, ये भी करके देख लेते हैं, कौन सा मैं ही कर रही हूं, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। ऐसे करते 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 वो एक ऐसा रास्ता होता है जहां से नेगेटिविटी घुस जाती है। तो मैंने ये बहुत दिनों से सोचा है कि जो चीज ठीक नहीं है, जो चीज बाबा को पसंद नहीं है, जहां मेरी अंदर एक इंडिकेटर थोड़ा सा चालू हो जाता है, उस बात को मुझे एकदम स्ट्रिक्टली ना कहना सीखना है। जैसे हम लोगों को एडिक्शन से छुड़ाते हैं ना, उनको भी एक लेसन देते हैं कि लर्न टू टेल नो। लोग नहीं ना कर पाते हैं इसलिए फंस जाते हैं कई सारी बुराइयों में, ना नहीं कह पाते, बस इतनी सी बात। हम भी अपने आप को रोक सके, ये गिफ्ट देंगे इस साल बाबा को कि हम वो चीजों को बिल्कुल ना कह देंगे, बिल्कुल वहां पे रेड लाइट, ये इसके आगे में जाना ही नहीं है मुझे, हो गया, चाहे वहां कितनी अच्छी सी सीनरी दिखती हो, लेकिन इस लाइन को मुझे क्रॉस करना ही नहीं है ना। हर देश की होती है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उसको क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। कई बार बेचारे वो साधारण मच्छी पकड़ने वाले सागर में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर देते हैं, बॉर्डर पे कई बार गाय भैंस चराने वाले गलती से भी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं ना। सीता ने भी वो बॉर्डर क्रॉस कर दी तो क्या हो गया, है ना, तो क्या था उसके सामने, उधर आकर्षण थी ना। तो ज्ञान मार्ग में हमारे सामने आकर्षण बहुत आएंगी ना, वो भी ऐसा करते हैं, चलो मैं भी कर लूं, है ना, वो भी खा लेते हैं मैं भी कर लूं, है ना, तो वो थोड़ी सी हम अपनी मर्यादा की रेखा को एक तो ये नहीं करेंगे, और दूसरा जो भी करना है अभी तुरंत करना है। बहुत सी चीजें हमें समझ में आती है, अच्छी लगती है, महसूस होती है, बाबा की मुरली पावरफुल चलेगी, हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छी मुरली चली, ऐसा लगता है कि बाबा बस मुझे तो अपना सॉल्यूशन मिल गया। थोड़े दिन के बाद फिर भी वही स्थिति, क्यों? सॉल्यूशन मिला आपको, लग रहा था आज मेरे लिए मुरली चली, बहुत बार लगता है ना ऐसा आपको कि आज की मुरली बिल्कुल ऐसा लगा मेरे लिए बाबा ने सुनाई, है ना, मुझे देख के ही सुनाई, मेरी सारे सवालों का जवाब बाबा ने दे दिया, फिर क्यों उदास है थोड़े दिन के बाद? ये तो वही गीता ज्ञान वाली बात हुई कि गीता ज्ञान कब पूरा हुआ था, तो जब अर्जुन ने कहा था नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, और युद्ध के 14वें दिन जब उसी अर्जुन का बेटा मर गया तो वो रोने लग गया, जब रोने लग गया तो भगवान ने कहा अरे तुम तो नष्टमुआ हो गया था तो तुम कैसे रो रहा है? तो उसने कहा कि भगवान मैं सारा ज्ञान भूल गया, कृपया आप मुझे दोबारा सुनाइए। तो वो लिखने वाले तो इतने महान है, उन्होंने क्या लिखा है पता है? कि तब जो है भगवान कहते हैं कि बेटा तू तो क्या भूल गया, मैं भी भूल गया, अब बताओ अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। अरे तो हम वो भक्ति मार्ग वाली गीता थोड़ी ना सुनते हैं, हम तो सच्ची गीता सुन रहे हैं। अब भी करना है, जो समझ में आ गया इट इज राइट तो करना ही है, सोचते नहीं रहना है। तभी बाबा बहुत बार मुरली में कहते तो मत करो, है ना। कई बार हम कहते करना तो है, जाना तो है, समर्पित तो होना है, सेवा में तो अच्छा लगता है, तो क्यों, है ना। भगवान धरती पे आया, सोच सोच के नहीं आया, जाना तो है, वो तो आ गया और हम सबको देखो कहां कहां से निकाला, गुलदस्ता बना दिया, कितनी कितनी पालना दे रहा है बाबा। तो हमें भी बाबा को रिटर्न गिफ्ट में क्या देना है, करके दिखाना है। अभी करो, जो करना है अभी, नाउ और नेवर। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं, अगर अभी भगवान से पालना लेके हम संपूर्ण नहीं बने तो कब बनेंगे? स्वयं भगवान के पढ़ाने से मेरे में दिव्य गुण नहीं आए, मेरी आदतें नहीं बदली, मेरे संस्कार न बदले, मेरा स्वभाव नहीं बदला, तो जो भगवान के हाथ में केस आया फिर भी जो ठीक नहीं हुआ तो उसे कौन ठीक करेगा? फिर क्या समय को टीचर बनाएंगे? कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे अभी नहीं करते, क्या कहते हैं, समय आने पर हो जाएगा। बाबा हम भी अंत तक तो बिल्कुल संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे भगवान तुम्हारा टीचर है या समय तुम्हारा टीचर है, क्या अच्छा लगता है कहना, भगवान मेरा टीचर है या समय? समय पे तो ठोकर खाके हर कोई करेगा, लेकिन कितना कर पाएंगे? समय पर करने वालों को समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आजकल तो ब्राह्मणों के अंदर भी देखो, हम देखते हैं किस किस टाइप की अचानक शरीर छोड़ देता है कोई, अचानक कैसी कैसी माया आ जाती है, है ना, कहां कहां चले जाते हैं। तो क्या पता समय आएगा तब मैं करूंगा, समय आएगा तब मैं संपन्न बनूंगा, वो समय आएगा भी कि नहीं आएगा? तो हमें जो बाबा से प्राप्तियां हुई है उसके बदले में जो मैंने सोचा ये दो चीज हम करें, एक तो जो ठीक नहीं है उसे ना, नहीं माना नहीं, एकदम पत्थर पे लकीर, और दूसरा अभी करना है, करके दिखाना है। वैसे भी दुनिया वाले भी कहते हैं जब आप ज्ञान में आए तो वो देखते हैं कि ये लोग क्या बने, इन्होंने क्या कुछ प्राप्त किया। तो हमें भी तो अपने जीवन में ये इच्छा है ना कि हम कुछ बन जाएं, हमें कुछ चेंज महसूस होवे, और भगवान भी क्या चाहते हैं, भगवान भी रोज यही कहते हैं ना कि बच्चे बन जाओ। तो आजकल तो बाबा लंबी मुरली नहीं सुनाते हैं, शॉर्ट मुरली, लेकिन बहुत प्यार देते हैं, कहते हैं वाह बच्चे वाह बच्चे, है ना। कितनी बार बाबा मुरली में वाह बच्चे वाह, बाबा को बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। तब मुझे कहीं ना कहीं अंदर लगना चाहिए क्या सचमुच मैं बाबा का ऐसा बच्चा हूं जिसको देखते ही भगवान को लगे वाह मेरा बच्चा, ये टाइटल मुझसे लागू होता है? जाने अनजाने भी हम गलतियां करते हैं तो क्या बाबा उस समय कहेगा वाह बच्चा बहुत अच्छी गलती कर रहे हो? नहीं ना। तो जब बाबा अभी और कुछ नहीं बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा कैसा हो वाह वाह, तो मैं ऐसा बच्चा अब बन जाऊं कि बाबा जब भी जिस भी एंगल से जिस भी टाइम कभी भी देखे, दुनिया मुझे कभी भी देखे कैसे भी देखे, लेकिन सबके मुंह से भी क्या निकले, वाह जीवन हो तो ऐसी, वाह स्वभाव हो तो ऐसा, वाह बोल हो तो ऐसा, वाह व्यवहार हो तो ऐसा, ऐसा हम बन सकते हैं ना। अरे हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, पीछे आएंगे क्या, अभी अभी तो ऊपर से भी आने वाले सब आ गए लगभग, है ना, अभी और कौन बनने वाला है। तो इसलिए इस बार मधुबन में हम वाह वाह बन के जाएंगे, है ना। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, अपना एक हाथ आगे करें, ऊपर करें, अपने आप को कभी कभी लगता है ना हम बहुत अच्छे बनते लेकिन कोई महिमा नहीं करता, टेंशन नहीं लेने का, रोज एक बार मैं भगवान का वाह वाह बच्चा हूं, वाह वाह रहूंगा। ओम शांति।